तो मेरे पीछे दोहराइएगा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस सुबह की सभा में, जिसमें कि इस भजन का हालांकि पूरा ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें से मैं कुछ ही पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा जो बहुत ही सुंदर इसका ट्रांसलेशन है। श्री नित्यानंद प्रभु दांतों में तिनका दबा करके बोल रहे हैं, हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। हे माधाई, तुम्हारे चरणों में मैं तुमसे विनती करता हूँ कि केवल एक बार हरि हरि के नाम का उच्चारण करो, केवल एक बार। प्रिय माधाई, केवल गौर हरि बोलो, कृपया उनके पवित्र नाम का जप उच्चारण करो और तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से, हालांकि इसका बहुत लंबा ट्रांसलेशन है, लेकिन हमें इस भजन से नित्यानंद प्रभु के भाव का पता चलता है कि कितने ही वो विनम्र हैं कि मार्ग में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं और चरणों को पकड़ कर कह रहे हैं। वो लक्ष्मण सोचिए, जो एक बार जब भगवान राम को मिला था वनवास, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल शेषनाग की तरह ही फुक्कार रहे थे कि मैं अभी दशरथ जी का भी वध कर दूंगा, कितना गुस्से में थे। लेकिन यहाँ पर जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं तो उनकी भावनाएं कितनी 100% बदल गई हैं। जाते हुए व्यक्ति के चरण पकड़ कर कह रहे हैं कि एक बार बोल दो, एक बार बोल दो बस। और नीचे लोचनदास ठाकुर कहते हैं, जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागृत करने का अनुभव नहीं किया, वह पाप पूर्ण व्यक्ति पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता और चला जाता है। तो आचार्य का भी मत यही है कि ये जो अवतार है इसमें हमारी रति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन लिखा है ये श्री लोचनदास ठाकुर ने कि हमें श्री नित्यानंद प्रभु की उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। तो आज का जो उत्सव है ये बहुत ही सुंदर मधुर लीला है। हालांकि दो दिन पहले हम लोगों ने मनाया, एक दिन पहले कौन सा उत्सव, निर्जला एकादशी, और इस बार तो बहुत ही भारी भरकम निर्जला एकादशी की तिथि थी। 10:10 कब बजेंगे 10। तो उसके बाद ऐसा उत्सव कि इतना सुंदर व्यंजन दही चिड़ा उत्सव आए, तो अपने आप में ये भी एक देखिए कितनी खूबसूरती है। पहले तो पानी भी नहीं देंगे और आज दही चिड़ा सप्लाई करेंगे, एकदम एक्सेलेंट भोजन। तो क्या कंट्रोवर्सी है, कैसा विरोधाभास है। लेकिन वैष्णव लोग वास्तव में फीस्ट मनाने के ही प्रेमी होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही लागू किया हमारे इस्कॉन के अंदर। हालांकि हम जानते हैं कि पूरी लीला को हम जानते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हर साल हम लोग ये कथा सुनते हैं। लेकिन देखिए, श्रील प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा है कि वास्तव में जो जीव है वो उत्सव प्रेमी है। उत्सव अगर आए तो नया जोश होता है, नया उत्साह होता है। उत का मतलब ऊपर, ऊपर की ओर उसका जो भाव है वो उठा होता है। तो इसलिए सो मैनी ऐसे फेस्टिवल्स आने चाहिए ताकि हम भक्ति को और जोश के साथ, उत्साह के साथ कर पाए। तो ये हमारे आचार्य ने इसलिए डाला है कि इतने सारे उत्सव डाल दिए गए हैं। तो आज बहुत ही मधुर सुंदर लीला है और बोर्ड पे हमने प्रार्थना की थी 6.47, यस, इसी का उच्चारण करते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्यार है, मेरे पीछे दोहराइएगा। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आज तोर करी मुदंडन, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आज तोर करी मुदंडन। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आज तोर करी मुदंडन। यस, आप लोग दोहराइएगा शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। सुनी, सुनकर प्रभु कहे, नित्यानंद प्रभु ने कहा, चोरा, चोर, दिली दर्शन, तुम मुझे मिलने आए हो, आए आए, इधर आओ इधर आओ, आजी आज, तोर तुम्हें करीमू मैं दूंगा दंडन दंड। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए, यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो, यहां आओ यहां आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसमें तात्पर्य नहीं है तो इसलिए स्तुति पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, अगर किसी को श्री चैतन्य कथा सुनने से सुख मिलता है, चैतन्य कथा श्रवण करने से किसी को अगर सुख की प्राप्ति होती है, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं उस दिन उसको एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख मंडल अवश्य दर्शन होगा। बोल। तो लेकिन ये इतनी बड़ी कथा है कि इसके सुनाने के लायक मैं हूं नहीं, लेकिन भक्तों ने जैसा मुझे आदेश दिया कि ये कथा आप प्रयास कीजिएगा, तो मैं प्रयास करूंगा इस कथा को उस रूप में सुनाने का जिस रूप में आचार्यों की इच्छा है, सिर्फ गुरुदेव की इच्छा है। तो ये देखिए, कथा प्रारंभ होती है जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के निकले थे वृंदावन की ओर, और जब वो वृंदावन से वापस आ रहे थे तो अद्वैत आचार्य के घर में रुके थे, और इधर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार उनके पिताश्री थे, और उनके जो ताऊजी थे वो थे हिरण्य मजूमदार, उनके सुपुत्र थे। तो कई बार हिरण्य और गोवर्धन, हालांकि दोनों ही पार्षद हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण किया था, सुना था उन्होंने कि इतने मधुर उनकी लीलाएं चल रही हैं नवदीप में, और अब उन्होंने संन्यास भी ले लिया है, तो बहुत इच्छा थी उनकी उनसे मिलने की। जब उनको पता चला कि अद्वैत आचार्य के घर में आए हुए हैं, तो वो भी वहां पर आए परमिशन लेकर के अपने माता पिता से, और वहां आकर के उन्होंने उनसे इच्छा व्यक्त की कि मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं, मेरा घर में मन नहीं लगता। बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसे लक्षण प्रकट किए थे, हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताश्री हैं वो कितने धनी व्यक्ति थे। बताया गया कि सप्तग्राम में जो कृष्णपुर है उसके अंदर जो टैक्स कलेक्शन का जो कार्य था हिरण्य मजूमदार का, उसमें बताया गया कि 20 लाख उनको कलेक्शन करना होता था, जिसमें से कि 15 लाख राजा के पास जमा करना था और 5 लाख उनको अनुमति थी कि वो रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप कथा में जानते हो कि वो कुछ 3 लाख और रख लेते थे, 12 लाख ही जमा करते थे। तो बहुत ही धनी परिवार के थे, इंद्र सम, जैसे इंद्रपुरी है, ऐश्वर्य है, ऐसा इंद्र का जो ऐश्वर्य है ऐसा ऐश्वर्य था घर के अंदर, इतना बड़ा मकान, इतनी सारी फैसिलिटीज, सब कुछ था घर के अंदर। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि स्वाभाविक रूप से आकर्षित थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से, स्वाभाविक रूप से नेचुरल उनकी ऐसी टेंडेंसी थी कि वो जब मिले महाप्रभु से तो कहने लगे, मेरा मन नहीं लगता घर में, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ ही अपना बाकी का जीवन बिताना चाहता हूं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो आचार्य हैं हम किनके वंशज हैं, हमारे अंदर भी ऐसे भाव विकसित होने चाहिए कि स्वाभाविक रूप से, जैसे अग्नि का बताया जाता है, अग्नि स्वाभाविक रूप से आकाश की ओर जाती है ना। आपने अग्नि को कभी ऐसे जलते नहीं देखा होगा, जब भी अग्नि जलाई जाएगी यज्ञ हवन कुंड के अंदर तो अग्नि ऊपर जाती है स्वाभाविक रूप से। पानी का स्वभाव कि वो हमेशा समुद्र की ओर बहना शुरू हो जाता है स्वाभाविक रूप से, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है पानी की बहने की समुद्र की ओर, कितनी भी बड़ी नदी हो लेकिन स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाएगी। ऐसे ही आप आकाश में कुछ भी फेंको उसकी नेचुरल टेंडेंसी वो वापस आएगा गुरुत्वाकर्षण के, उसका स्वाभाविक है। लेकिन ये जीव इतना मूर्ख है, ड्यू टू इल्यूजन, माया के कारण, बद्ध अवस्था के कारण, ऐसे खराब संघ के कारण,
उसका स्वाभाविक ऐसा होता ही नहीं है, उसको लाना पड़ता है जबरदस्ती, उसको जोतना होता है, उसको बताना पड़ता है नहीं नहीं ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। लेकिन यहां हम देखते हैं जो मुक्त जीव हैं, जो सिद्ध आत्माएं हैं, वो उनका ऐसा नहीं होता। जैसे इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद क्या आपको कभी लगा ऐसा कि आपने जीवन में कभी भगवान को भूले हो? इसलिए प्रभुपाद जी ने सोच करके बताया कि ऐसा कोई क्षण मुझे अपने जीवन में याद नहीं कि जब मैंने भगवान श्री कृष्ण को भुलाया हो। तो हमें अपना एक्सरे करना चाहिए ऐसी कंडीशन में कि मेरा कितना नेचुरल है और कितना प्रेशर के कारण है, और कितना मुझे लगाया जाता है कि मंगल आरती क्यों नहीं उठते, कथा में क्यों नहीं सुनते जब मैं, तो नेचुरल हमारी टेंडेंसी क्या है बहुत बढ़िया नींद आती है ना, हमारी नेचुरल टेंडेंसी ये। इससे पता चलता है कि हम लोग बद्ध जीव हैं, हमें आकर्षण नहीं होता। लेकिन यहां रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे कि मेरा मन नहीं लगता। ऐसे घर में मन नहीं लगता, सोचिए जहां किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय प्राय भीतरे वैराग्य बहिरे कर करे सर्व कर्म। ये दो प्यार हैं लेकिन मैंने उनको मिक्स किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैराग्य है अभी तुम्हारा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो प्रभु जी बोलते हैं कि मैं इससे अच्छा घर छोड़ करके चला जाऊं, मंदिर चला जाऊं, मंदिर में कितनी शांति है ना। ज्यादातर आम आदमी यही सोचता है कि भाई घर में लड़ाई हो जाए या कुछ झगड़ा हो जाए माता पिता से बच्चे का तो वो भागता है, कि वो वैराग्य सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करके मंदिर में आएगा वो वहां भी जाकर लड़ाई झगड़ा ही चालू करेगा कुछ दिनों बाद, है ना। स्वाभाविक होना चाहिए ये। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को इस शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो रति मंजरी हैं, ऑलरेडी वो राधारानी की सेविका हैं, उनको ये इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को आवश्यकता है कि हम लड़ाई झगड़ा करके मंदिर ना आए। हम लोग कैसे आए, जब हम कन्विंस हो जाए सचमुच में कि हाँ यही वो मार्ग है। तो कह रहे हैं कि क्या करो, मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय पराए। अभी आप ये छोड़ो और घर में जाओ, और जैसे विषय पराए लोग जो होते हैं वो अपना बिजनेस बड़े ध्यान से करते हैं, ऐसे तुम करो। और कैसे करो, भीतरे वैराग्य बहिरे करे सर्व कर्मा। भीतर में वैराग्य होना चाहिए और बहिरे करो सर्व कर्मा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि कैसे करना है, भीतर में वैराग्य और बाहर में सब काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है उस कुलटा स्त्री के माध्यम से, कि जो कुलटा स्त्री होती है वो क्या करती है, वो घर में सब ठीक ठाक काम करती है, किसी को शक नहीं होने देती, और उसकी जो उसका जो मन है वो किसी गैर पुरुष में आसक्त होता है, पति को शक नहीं होने देती। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसके माध्यम से हमें शिक्षा दी, हमें भी ऐसे ही करना है, हमें उल्टा नहीं बनना, हमें क्या करना है, ठीक ठीक कार्य करना, अपने घर के सारे जो भी हमारा धर्म है, जैसे एक पति का धर्म है कि वो पत्नी को सारी फैसिलिटीज दे भक्ति करने की, और पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति की परमेश्वर की तरह पूजा करे, तभी गृहस्थी सही सही चलती है। और ठीक उसी प्रकार से पिता का कर्तव्य कि वो पुत्र को सारी शिक्षाओं की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, उसको जो फैसिलिटी चाहिए, और पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता का आज्ञाकारी हो, पिता की मन इच्छा से जाने कि उसको क्या चाहिए, वो सुपुत्र माना गया है। तो इसी प्रकार से ये हमारा धर्म है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कुलटा स्त्री जिस प्रकार से मन किसी गैर पुरुष में लगाती है, हमें भी क्या करना है, अपनी सेवाओं को घर जहां पे भी हमें मिली हैं सेवाएं उनको ध्यान से करते हुए उस गैर पुरुष में अपना मन लगाए। और यहां पर गैर पुरुष कौन है, जो सबके विश्वात्मा है भगवान में, वो गैर पुरुष भगवान यहां पर समझाए गए हैं, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझाया, ये मरकट वैराग्य छोड़ो और युक्त वैराग्य अपनाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, ये मरकट वैराग्य तुम्हारा, बंदर बंदर यही करता है, वो कुछ कपड़े नहीं पहनता और फल भी खाता है, लेकिन इच्छाएं उसकी बड़ी कैसी होती हैं, भोग इच्छाएं होती हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने अनुसार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में वापस चले गए और ठीक ठीक कार्य करते रहे एक साल तक। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, एक वर्ष तक बड़े ध्यान से बिजनेस करते रहे। माता पिता बहुत खुश हो गए कि अब हमारा बच्चा जो है समझदार हो गया है। जय श्री श्री कृष्ण बलराम देव भगवान की जय, श्री श्री राधा राधिकरमन देव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय। तो अब हमारा पुत्र जो है समझदार हो गया, पहले कुछ बिगड़ सा रहा था, घर से भाग जाता था कभी भी। तो ऐसा हमारे यहां भी होता है ना, कुछ ब्रह्मचारी अगर कुछ मंदिर में जाना शुरू कर दे कोई नया लड़का, तो माता पिता क्या प्लान बनाते हैं कि इसकी शादी कर दो फिर सारा झंझट खत्म, फिर ये भागेगा नहीं। तो माता ने भी यही कहा था, ये रोज का कार्य था रघुनाथ दास गोस्वामी का। एक साल तक तो उन्होंने ठीक ठीक निभाया, एक साल बाद वो रोज भागते थे। एक दिन भाग गए तो पिताजी ने बहुत दूर जाकर उन्हें पकड़ा और चुपचाप घर में कहा यहां पे रहो। लेकिन रोज का जब कार्य हो गया तो उन्होंने कितने लोग रखे, 11 लोग रखे उनके लिए। ये भागता है रोज का इसका ये रूटीन है, तो उसको पकड़ करके फिर लेकर आओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से वहां रह रहे थे। लेकिन दूसरी ओर वहां पर एक और घटना घटी, और वो क्या, जैसा हमने बताया कि 8 लाख रुपए वो बचाते थे, जबकि उनको बचाना था कितना, 5 लाख। तो वहां के जो मुसलमान चौधरी थे, चूंकि ये सेवा उनके पास थी, तो जब हिरण्य मजुमदार को ये सेवा दी गई तो उनकी ये सेवा चली गई, तो उनको ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने पता लगाया कि ये तो कुछ धोखा कर रहे हैं। और फिर वो कार्यकारक जो मंत्री था उसको लेकर एक दिन आ गए घर में और आकर के पकड़वाया। तो क्षमा कीजिए, अभी वो घर में आए तो हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार को पता चल गया कि हमें इस तरह से पकड़ने वो आ रहे हैं, तो वो घर छोड़कर पहले ही भाग गए, चले गए। और घर में कौन मिले, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि अभी बालक ही थे। चूंकि यही होता है सामान्यतः, अगर कोई चोर नहीं मिलता तो उसके संबंधी को पकड़ करके कहा जाता है इसको टॉर्चर करेंगे, वही दिलाएगा माल। तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वहां पर, उनको बंदी बना लिया गया। रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए, कई बार हम सोचते हैं मैं 16 माला का जप करता हूं, इतने नियमों का पालन करता हूं और कोई लाभ नहीं हो रहा, मेरे साथ ये क्यों हो गया प्रभु जी। अभी हम जैसे कल गए थे, गांव था मुंड का गांव था, तो वहां पर जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा जी, उनके भाई थे, उनके हम घर में गए थे, कुछ प्रोग्राम था। तो हम सोच रहे थे कि जब घर में घुसे तो देखते ही लगे, अरे ये तो हमारे मंदिर से भी कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मकान है, इतना सुंदर सब कुछ, वेल सेटल्ड। लोग चकित थे कि इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर, अरे वाह। तो मैंने उनके जो भतीजे थे जिनका वो मकान था उनको बिठा करके उनसे पूछा कि आपका जीवन तो बहुत खुशी में होगा, कितना बढ़िया घर है आपका, आप विश्वास कीजिए। उस जैसे मैंने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ कर यहां बिठाया पास में, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और कहने लगा कि मैं जो जीवित हूं मैं ही जानता हूं, मुझे मर जाना चाहिए था अब तक। तो पहले मेरा जीवन इतना खराब है, मैं इतना दुखी हूं कि मेरे समान कोई दुखी नहीं होगा। सोचिए, तो हम चकित रह गए कि अरे आश्चर्य, इतना सुंदर मकान, इतना सुंदर टेलीविजन रखा जितना हमारा ये पूरा जो मंदिर का ऑल्टर है, और इतना सुंदर, देखिए ये दुखी है ये लोग भी। तो कई बार हम सोच, तो मैंने उनसे पूछा आप तो भक्ति करते थे, कहने नहीं आप, हमने छोड़ दिया, 16 माला करते थे वो बंद कर दिया, अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो गई कि अब हमें नहीं करना है सब, शायद उन्हीं के कारण ऐसा हो गया वो माला करने से। तो हम देखते हैं हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया, जबकि उनका मन तो लालायित था श्री चैतन्य महाप्रभु का संग लेने के लिए। हमें से शिक्षा लेनी चाहिए, जैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर यत करोति शोभनम एव करोति। बड़ा ही पुराना, ये बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत का। भक्तों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, जो श्री कृष्ण का भजन करता है वो बहुत ही पीस ऑफ माइंड होता है और बहुत चतुर भी होता है, वो निकाल लेता है अपना कार्य। अब उनको जेल में डाल दिया गया, हालांकि कायस्थ थे, इसलिए मुसलमान जो चौधरी था उनके चेहरे को देख करके पीटता नहीं था लेकिन डांटता बहुत था, दांत निकालता था उनके सामने और ऐसे धमकाता था कि तुम्हारे माता पिता ने धोखा दिया हमें।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए भगवद गीता के 17वें अध्याय में यह श्लोक आता है कि वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या है मीठे वचन बोलना और भाने वाले शब्दों का उच्चारण करना और कोई क्षुब्ध ना हो ऐसे शब्दों का उच्चारण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और जब भी कुछ आप बताएं उसका रेफरेंस देना। श्रील प्रभुपाद जी एक बार लंदन में लेक्चर दे रहे थे और चूंकि नया नया अभी इस्कॉन बना था तो प्रभुपाद जब भी प्रवचन करते तो बीच में श्लोक को कोट कर रहे थे। अब जब प्रभुपाद ने कहा कि एनी क्वेश्चंस, तो एक प्रभु जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये तो ठीक है आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बीच बीच में आप कुछ दूसरी भाषा बोल रहे हो हमारी समझ में नहीं आ रहा, और जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो बीच बीच में क्यों बोलते हो आप ये सब ये जो संस्कृत भाषा कुछ क्यों बोल रहे हो, हमें तो आता नहीं समझ में। प्रभुपाद जी ने कहा वाह बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक अच्छा जो वकील होता है जब वो कोर्ट में जज के सामने कुछ आर्ग्यूमेंट रखता है तो वो हमेशा अपने आर्ग्यूमेंट में बोलता है अंडर सच एंड सच आर्टिकल दिस इज अंडर सो एंड सो, इससे जज को ये पता चलता है कि ये जो बोल रहे हैं इट इज ऑथराइज्ड। सो मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के श्लोक इसलिए उच्चारण कर रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं इट इज ऑथराइज्ड, कुछ मनगढ़ंत नहीं सुना रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वाणी की तपस्या है वो ये है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, कहने लगे आप और जो मेरे ताऊ जी हैं, मेरे जो पिताजी हैं और आप जो हैं, मुझे लगता है बिल्कुल तीनों भाई की तरह से हैं, बिल्कुल तीनों भाई हैं आप, भाई की आप मुझे अपने ताऊ जी की तरह लगते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि। और देखो कभी कभी भाई लड़ते भी हैं, सगे भाई भी कभी कभी लड़ते हैं और कभी कभी उनमें मैत्री भी होती है, प्रेम कलह होता है, कलह होता है लेकिन प्रेम कलह होता है भाई भाई में। और जब ऐसे मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करने लगे, और देखो जब मैं अपने पिताजी का पुत्र हूं तो मैं आपका भी पुत्र हुआ इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, तो आप मेरे पिताजी के समान हुए, मैं आपका पुत्र जैसा हुआ। तो उसकी जो दाढ़ी थी, चूंकि मुसलमान लोग मुछे नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं बड़ी बड़ी, उस मुसलमान चौधरी की आंखों से आंसू बरसने लगे, दाढ़ी में से लुढ़कने लगे नीचे, कहने लगे तुम सच कह रहे हो बिल्कुल। उसके हृदय को इतना पिंगला दिया। देखिए वाणी की तपस्या है, वाणी का अगर हम सही मीठे शब्दों का प्रयोग करें, कैसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी हमारे ऊपर प्रेशर हो सेवा का, अगर हम वाणी को सही मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कैसी भी कंडीशन में हम लोग अपना मित्र बना लेंगे उसको। सोचिए उस जल्लाद मुसलमान चौधरी को ऐसे मीठे शब्दों का उच्चारण करके दाढ़ी में से आंसू लुढ़क रहे हैं उसके, और कहने लगे तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम मेरे पुत्र जैसे हो और मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा, मैं किसी न किसी तरह तुम्हें यहां से छुड़वा दूंगा। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, अपने उसको शिक्षा दी। देखिए सुंदर ये लिखा है, पालन करता को शोभा नहीं देता कि पलने वाले को दंड दे, रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं उसको। और आप तो फिर शास्त्रवेत्ता हो मुसलमान चौधरी को कह रहे हैं, आप तो शास्त्रवेत्ता हो, आप तो जीवित संत हो, कोई संत से कम नहीं हो आप। उसको ऐसा मक्खन लगाया, क्योंकि हमारे जो स्वामी है वो मक्खन चोर है, है ना, और हम लोग क्या करते हैं, वो चुराया हुआ मक्खन हमें दे देते हैं और हम फिर उसको मक्खन लगाते हैं, वो वाला मक्खन जो कृष्णा ने चुराया था। तो बड़े से बड़े जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर डोनेशन भी देते हैं, अपना जीवन भी देते हैं और भक्त भी बन जाते हैं उस मक्खन से। सोचिए तो कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से फिर उस मुसलमान चौधरी ने कहा देखो आप हमारी भेंट कराओ अपने ताऊ जी से, और मैं भी तो भागीदार हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो लेकिन ऐसा उसका हृदय पिंगला दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उस मुसलमान चौधरी ने कहा भेंट तो कराओ, जैसा तुम्हारे ताऊ जी कहेंगे ना वैसा ही मुझे मंजूर होगा, मुझे ये नहीं कि मुझे इतना धन चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, देखो मैं भी तो आश्रित हूं ना। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़े गए और उनको घर में लाया गया और उन्होंने मामला तय कराया, बैठ गए और बिल्कुल सब क्लियर हिसाब चुकता कराया और खुश हो गए वो पूरी तरह से।
इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस लीला से हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी कि हम लोगों को भी अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए तपस्या शब्द का अर्थ यही है, वाणी की तपस्या का मतलब ये नहीं है कि अब हम क्या करें। तपस्या शब्द का अर्थ होता है जो हमें पसंद नहीं है उस कार्य को करना तपस्या कहलाता है। जैसे हमें पसंद था कि हम पानी पिए और वो भी इतने टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन हम लोगों ने तपस्या की कि हम पानी नहीं पिएंगे, संकल्प कर लिया, तो भले प्यास लगी लेकिन हम लोगों ने उसको सहन किया। तो वाणी की तपस्या भी यही है। कई बार लोग शिकायत करते, प्रभु जी वो ऐसी सिचुएशन थी, एकदम पावर आ गई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तपस्या का मतलब यही है कि हमें पसंद नहीं है लेकिन हम उसको सहन करेंगे। तो इस लीला से हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी। इस प्रकार से जब वापस वो आ गए घर में, उनका रूटीन कार्य वही फिर से चलने लगा। वो भागते थे, रोज जाते थे। एक दिन वो उठे और इस प्रकार से वो चले गए और यहां पर आए जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में मिले थे। और तो जब बार बार जा रहे थे, उससे पहले ये घटना रह गई, क्षमा कीजिए, जब ये भाग रहे थे बार बार, तो इनकी माता ने कहा, देखो इस लड़के का कोई भरोसा नहीं, अब ये क्या करेगा, इसका विवाह करा दो। तो चूंकि इनके पिताश्री बहुत धनी थे तो सारे शहर में जो सबसे सुंदर लड़की थी वो इसके लिए ढूंढ के लाओ, इसका विवाह करो ताकि ये भागना छोड़ दे। तो अब विवाह करने के बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी का स्वभाव बदला नहीं। देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा बंधन रोक नहीं पाया। और हम लोग कितने तथाकथित ऐसे भक्त हैं जो पहन लेते हैं ये सारी ड्रेस और कोई भी माता जी अगर जा रही हो तो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं उसमें। कितनी घिनौनी स्थिति है हमारी, सोचिए, हमें इससे कंपैरिजन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी माता को अगर आप एक बार भी देख लो तो दूसरी बार कभी नहीं देखना। एक बार तो चलो आप रोड पे जा रहे हो, माता जी कोई आ रही है तो एक बार तो निगाह पड़ सकती है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आपके बचने के चांसेस नहीं है। डोंट लुक सेकंड टाइम। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो उसके बावजूद भी वही उनका हाल है। तो उनके पिताजी गोवर्धन मजुमदार ने कहा, उनकी माता ने जब कहा कि इस लड़के को अब रस्सियों से बांधना पड़ेगा चूंकि अभी भी नहीं रुकता है घर में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताश्री हैं गोवर्धन मजुमदार ने कहा, जिस पुत्र को ये धन जन ऐश्वर्य नहीं बांध पाया, जिसको ये सुंदरी स्त्री नहीं बांध पाई, इसको इन भौतिक रस्सियों से बांधने से ये नहीं रुकने वाला है। इसलिए और जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पागल किया गया हो, बहुत सुंदर प्यार है, हालांकि अगर पढ़े उसको, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पागल किया गया हो उसको रोकना तो असंभव है, इसलिए इसको अब जाने दो, कोई चांसेस नहीं लगते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसलिए इस्कॉन का प्रत्येक भक्त क्रांति होता है। देखिए इस्कॉन का अगर कोई भक्त बन गया है वो एडजस्ट नहीं करता सिचुएशन को ऐसी कंडीशन में कि यहां पर तिलक लगा के नहीं जाना, ऑफिस है, किसी भी कंडीशन में वो बदलता नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में गए तो अपना कुछ भी नहीं बदला। प्रभुपाद से भी कहा गया था कि आप ये उसे चम्मच से खाओ, छुरी से काटो, कोट पैंट पहनो और टाई लगाओ। प्रभुपाद जी ने कहा क्या कि मैं यहां सीखने नहीं आया हूं, मैं सिखाने के लिए आया हूं। तो इस्कॉन का प्रत्येक भक्त एक क्रांति होता है। वास्तव में वो जाता है, वो सोसाइटी को बदल देता है, खुद नहीं बदलता। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बहुत सुंदर प्यार ये डाला है, देखिए क्या कहा इनके पिताजी ने, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई दे, कि किसी पिता में विगत कर्म, पुत्र के विगत कर्मों को निरस्त नहीं करने की शक्ति होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, माता पिता भक्त होते हैं पुत्र भक्त नहीं होता, और कभी कभी रिवर्स भी होता है। तो यहां पर बहुत अच्छी बात कही गोवर्धन मजुमदार ने कि जो प्रारब्ध लेकर आया है हमारा बेटा, इसको बदलने की शक्ति किसी पिता में नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र थे भौम, जो पृथ्वी देवी से प्रकट हुए थे, जब भगवान वराह के रूप में आए थे, उन्होंने जरासंध का संग कर लिया था, तो आगे चलकर क्या बन गए, भौमासुर। महाराज अंग के बेटे थे वेन, कितने सुंदर भक्त थे महाराज अंग, लेकिन अपने पुत्र की किस्मत को नहीं बदल पाए और वेन उन्होंने घर छोड़ना ही मंजूर किया। इसी प्रकार से केकई हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की माता भक्त नहीं बना पाए। दशरथ महाराज ने बहुत उनसे भिक्षा मांगी, दशरथ महाराज ने उनसे विनती की कि मान जाओ, ऐसा मत करो। और वाल्मीकि रामायण में एक स्थान पर आता है दशरथ महाराज ने फिर श्राप दिया जब उन्होंने भिक्षा मांगी उनसे। उन्होंने कहा कि आज मैं पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री अगर अपने पति के द्वारा मनाई जाएगी तो वो नरक में वास करेगी। कभी भी स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो पति उसके सामने हाथ जोड़े और वो माने नहीं। इसलिए दशरथ महाराज ने तो हमें भक्तों की बात माननी चाहिए। इसलिए यहां पर ये शिक्षा मिलती हमें कि भक्त अगर कहें और अगर सामने वाला नहीं मानता तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इस घटना से हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की इसके ऊपर कृपा है, इसलिए ऐसे पागल व्यक्ति को घर में रखना बहुत कठिन है। उनके पिताश्री ने ऐसा शब्द कहा। और एक दिन फिर वो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु से मिलने गए और वहां पर अनेक कीर्तन कर रहे थे और सेवक जन उनके पानीहट्टी क्षेत्र में। वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु के रूप का वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। लिखा है कि एक चबूतरे पर विराजमान थे, 100-100 करोड़ सूर्य जैसे उदित हो रहे हो, नित्यानंद प्रभु उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसे शोभा पा रहे थे। चारों तरफ उनके पार्षदगण विराजमान थे और दूर से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, दूर से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और ये श्लोक का उच्चारण अब यहां पर आएगा जो हमने यहां किया कि जब दूर से दंडवत प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु ने तो देखा नहीं, किसी दूसरे भक्त ने बताया कि नित्यानंद प्रभु आपको कोई भक्त दूर से प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने ये प्यार उच्चारण किया जो हमने बोर्ड पर लिखा, सुनी प्रभु कहे चोरा दिले दर्शन, आए आए आज तोर करिमु दंडन। और क्या कहा, प्रभु बोलाए ते हो निकटे न करे गमन, आकर्षिया तारा मते प्रभु धरिला चरण। इस उत्सव को दंडोत्सव भी कहा जाता है। देखिए हमारे यहाँ दंडोत्सव भी मनाया जाता है, कितना आश्चर्य है, किसी और मनाया जाता है ऐसा दंडोत्सव, हर कुछ उत्सव है। यहां पर जैसे भगवान के धाम में वहां का चलना नृत्य माना जाता है, बोलना गायन माना जाता है, सब कुछ उत्सव है भगवान के धाम में। तो यहां भी ये मूर्तिमान रूप है इस्कॉन के जो मंदिर है, जैसे आज श्रील प्रभुपाद का पत्र है कि आवर टेम्पल नॉट इन द मेलबोर्न, इट इज ऑल इन ओनली इन वैकुंठा। हमारा कोई भी मंदिर जो है भौतिक जगत में नहीं है। तो दंड उत्सव। और यहां पर श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्हें पकड़ करके और अपने जबरदस्ती, वो आने रहे थे आगे, अपने चरण उनके सिर पर रख दिए। और क्या कहा, कौतुक नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथ कहे कि चुहैया सदय। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु और विनोदी थे, दयालु होने के कारण भी रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले। क्या बोले, निकटे ना आइस चोरा भाग दूरे दूरे, आज लागा पाछे दंडी मुंह तो मारे। तुम चोर की भांति हो क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो, अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो ये बहुत ही गोपनीय शिक्षा है यहां पर। देखिए कि कौन सी चोरी की रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कोई चोरी नहीं की उन्होंने तो, लेकिन उनको चोर कहकर बुलाया जा रहा है। क्या आपने चोरी की है, मेरी चोरी की है। तो आचार्य बताते हैं कि वास्तव में जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो संपत्ति है नित्यानंद प्रभु की, डायरेक्ट आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं ना, हम तो दीवाने हैं बांके बिहारी के, ये जो बीच में रगड़ा है ये हमें नहीं चाहिए, ये सब धोखा है। तो वास्तव में आदि पुराण में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है वो कि हे अर्जुन, जो ये कहता है मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है, भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है, वो प्राप्त कर सकता है मुझे। तो हम यहां पर देखते हैं कि और दूसरी चोरी क्या की, वो दूर से प्रणाम कर रहे थे। हमें भी इसमें देखना चाहिए कि जब हम किसी को प्रणाम करें, खासकर सन्यासी महाराज को, तो हम जब प्रणाम करें तो कम से कम वो हमें देख पाए, ऐसे में प्रणाम करना चाहिए। हाँ अगर भीड़ बहुत है तब हो सकता है कि महाराज की दृष्टि ना पड़े, लेकिन जब हम बहुत भीड़ ना हो तो कम से कम ऐसे प्रणाम करें कि वो हमें देख पाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम चोर हो, चोर की भांति हो, और फिर तुम्हें मैं क्या दूंगा, तुम उत्सव मनाओ और मेरे संगियों को दही और चिवड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। दधि चिवड़ा भक्षण करा मोर गणे, सुनी आनंदित है ला रघुनाथ मने। ऐसा दंड दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी आनंदित हो गए। देखिए कितना सुंदर प्रेम कला है ये, इसको शास्त्रीय भाषा में प्रेम कला कहा जाता है, प्रेम भी और कला भी, है ना। ये भक्तों का होना चाहिए ऐसा कि दंड अगर किसी को दिया जाए तो उसका चेहरा बदल जाता है। यहां तो आनंदित हो गए रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत प्रसन्न हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आदमियों को कहा कि जाओ गांव में भेजा दही चिवड़ा, दही मिठाइयां चीनी केला सब ले आओ। तो बहुत सारे ब्राह्मण आने लगे, सज्जन लोग आने लगे, असंख्य लोग आने लगे। वहां पर संख्या नहीं बताई गई कितने लोग थे। अब नित्यानंद प्रभु ने तो धोती चेंज की अपनी और चबूतरे पर बैठ गए और बहुत सारे लोग वहां पर उनके आसपास निकट बैठ गए और उसके पास दूर बैठने लगे, फिर दूर बैठने लगे, दूर बैठने लगे। करते करते वहां गंगा जी बह रही है जैसे आप जानते हैं, और जिन लोगों को जगह नहीं मिली, अगर हम लोग होते भाई प्रसाद तो चल रहा है प्रसाद माहौल में, लेकिन जगह नहीं बैठने की, अब हम नहीं लेंगे प्रसाद, चलो घर। लेकिन वहां पर भक्त लोग इतने उत्सुक थे कि पानी में खड़े हो गए। किसी किसी को यहां तक आ रहा है पानी, घुटने तक, किसी किसी के पानी यहां कमर तक आ रहा है। तो जो और बाद में लोग आए उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं यहां तक आ जाएगा, और यहां तक पानी आ रहा है सोचिए। और वो सबको 20 लोगों को अपॉइंट किया, सबको प्रसाद डिलीवर कीजिए, सबको प्रसाद भेजा जा रहा है। और इतने सुंदर सुंदर ये आइटम बनाए गए, जैसा कि इसमें लिखा है कि नित्यान प्रभु की तुष्टि के लिए पानी में एक स्थान में गर्म दूध चिवड़ा भिगोया गया, तब आधा चावल दही चीनी केला के साथ मिलाया गया और आधे भाग को औटे दूध में और विशेष प्रकार केले में जो चंपा कला कहलाता है, ऐसा भी केला विशेष प्रकार का केला होता है जो चंपा कला कहलाता है, और फिर उसमें चीनी और कपूर डाला गया और सबको नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ में बैठे। 3 प्यार हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा कितने नाम हैं, 61, 62, 63 बहुत सारे उनके संगी हैं, सुंदरानंद हैं, सदाशिव हैं, तो बहुत सारे उनके मित्रगण पास में बैठे हैं नित्यानंद प्रभु के। और प्रत्येक व्यक्ति को दो दो पात्र दिए गए, एक में चिवड़ा और एक में औटा दूध रखा था, दूसरे में दही रखा था। सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दो दो पात्र सबको दिए गए। और इस प्रकार से जब ये सब बांटा जा रहा था, वहां पर आए कौन, राघव पंडित आ गए। राघव पंडित घी में पके बहुत सुंदर पकवान बनाकर लाए थे, और नित्यानंद प्रभु को आकर देखने पहले तो हंसने लगे, अरे ये सब क्या चल रहा है, नित्यानंद प्रभु मैं आपके लिए भोजन बना के लाया हूं और आप यहां पर हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि वास्तव में ये जो पहले तो मैं सारा भोजन यहां लूंगा अब दोपहर का, लेकिन शाम को तुम्हारे घर में लूंगा, इसलिए तुम भी बैठ जाओ। उनके लिए भी दो पात्र रखाए गए और प्लेट लगाई गई, उनको भी भोजन दिया गया। और नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, गोप जाति आमी बहु गोप गणे संगे, आमी सुख पाई ए पुलिन भोजन रंगे। मैं तो गोप हूं, ग्वाला हूं, और ये जो साथ में बैठे हैं सब क्या हैं, ये सब ग्वाले गोप गण हैं। और सबको याद, देखिए श्री नित्यानंद प्रभु ने ऐसी कृपा दृष्टि की, जितने भी वहां लोग उपस्थित थे सबको क्या अनुभव हुआ कि कृष्ण बलराम बीच में बैठे हैं और हम सब लोग गोप हैं। और वही उनको याद आया कृष्ण लीला का कि बीच में बैठते थे भगवान और सब उनके मुखमंडल को देखते देखते भोजन का आस्वादन करते थे, सबको वो भाव में आ गए। और राघव पंडित भी भिगोए चिवड़े लेने लगे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ध्यान तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने, चूंकि लक्ष्मण कभी भी बिना राम को खिलाए नहीं लेते भोजन, उसी प्रकार से यहां नित्यानंद प्रभु ने भी ध्यान किया श्री चैतन्य महाप्रभु का। और जैसे ही ध्यान किया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए उनके सामने। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो इस दृश्य को देखकर हंस रहे थे, उनको हंसी आ रही थी। नित्यानंद प्रभु तुरंत खड़े हो गए स्वागत के लिए, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे औटे दूध में गरम दूध में कोई तो चिवड़ा ले रहे हैं, कोई दही चिवड़ा ले रहे हैं और सब भोजन कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, पात्र लिया और उनके मुख में खिलाना शुरू किया। लेकिन इस दृश्य को कोई देख नहीं पा रहा था, सब सोच रहे थे ये किसको खिला रहे हैं, कोई दिख तो रहा नहीं यहां पर। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी हंस रहे हैं उनको देखकर, नित्यानंद प्रभु उनको देखकर हंस रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी थोड़ा कोर लिया और नित्यानंद प्रभु को खिलाया। नित्यानंद प्रभु के हाथ ऐसे हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु का मुंह चलने लगा, तो कई पार्षदगण कह रहे अरे इनके हाथ नीचे, ये खा कैसे रहे, सीधा कैसे खा लिया इन्होंने, क्योंकि सब कोई देख नहीं पा रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। और नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि सब आस्वादन कर रहे हैं सुंदर प्रसाद का। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर प्यार है, अभी 5 मिनट है मैं पढ़ सकता हूँ, ये 3-4 प्यार हम पढ़ेंगे, बहुत ही मधुर प्यार है 84 से 87। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बिठाया, तब दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। आसन दिया महाप्रभु रे ताहा वसाईला, दुई भाव तबे चिड़ा खाई ते लागिला। देखे नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला, गत गत भाव वेश प्रकाश करीला। अपने सास चित्र महाप्रभु खाते देखकर नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। आज्ञा दिला हरि बलि कर है भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरी लुवन। हरि हरि उठी सबको, उन्होंने महाप्रसाद बोलने का समय नहीं था, इतनी लंबी प्रार्थना कौन बोले, इतना सुंदर प्रसाद और इतने ज्यादा लोग, तो क्या आज्ञा दिली, हरि हरि बोलो, हरि हरि हरी हरी। और क्या कहने लगे, हरी हरी बलि वैष्णव कर भोजन, पुलिन भोजन सबर हईल स्मरण। और वही याद आया सबको, कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल के साथ यमुना के तट पर भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु और उदार हैं, और यह तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब स्वीकार कर लिए। तो बहुत ही ये मधुर दृश्य है, आप चित्र देख करके रोमांचित हो जाएंगे, जो हमारे भक्तों ने जो चित्र बनाया है आपने देखा होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर उठा करके भ्रमण कर रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल ये क्लिप वहां से ली गई है, फोटो लिया किसी ने, इतना सुंदर चित्र बनाया भक्तों ने। वहां पर कुछ घटनाएं और क्या हुई, अनेक दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना कि भाई नित्यानंद प्रभु फीस्ट कर रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के बेटे, चलो चलो भाई सब चलते हैं प्रसाद। तो दुकानदार आए और वहीं पे दुकान लगा दी, क्योंकि इतने लोग प्रसाद लेने वाले हैं और कौन जाएगा बार बार लेने लेकर आएगा भिगोएगा, दुकान वहीं लगा दी सबने। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबका खरीद लिया, जितने भी दुकानदार आए अपना बोरी भर भर करके सबका खरीद लिया और उनको ही खिलाया। और जो ये भी देखने आया कुतूहल, भाई बड़ी भीड़ लगी है यहाँ क्या चल रहा है, उसको भी बिठाया नित्यानंद प्रभु ने और उसको भी खिलाया, तुम भी खाओ। तो सबको सबके हाथ में और सबके भोजन के बाद हाथ मुंह धोया गया, फिर 4 पात्रों में रघुनाथ दास गोस्वामी को भी दिया गया। देखिए नित्यानंद प्रभु यहां पर एक आखिरी में कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि जो सेवा कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है जो सेवा कर रहा होता है वो सारा प्रसाद बट गया, वो बेचारा रह जाता है, जैसे सारी सेवा की उसको प्रसाद नहीं मिलता। हमें याद है द्वारका में जो पहली जन्माष्टमी हमने मनाई थी, हम पूरा दिन भागा दौड़ी करते रहे, रात को 2 बजे हमने अमोघली प्रभु को कहा कि प्रभु जी कुछ प्रसाद दो, भूख लगी है बहुत तेज। प्रभु जी अपनी पॉकेट में से 2 तुलसी के पत्ते निकाले, हम बोले ये 2 बचे हैं, एक आपका और एक मेरा बस। हमने पूछा प्रसाद, कह ले सब बांट दिया। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि जो सेवा की रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इनके लिए कितने पात्र रखे, 4 पात्र रखे इनके लिए, बहुत सेवा की इन्होंने। तो हमें जो सेवा कर रहा हो भक्त उसकी चिंता करनी चाहिए सबसे ज्यादा, ये बेचारा सेवा कर रहा है तो इसके लिए प्रसाद होना चाहिए और डबल होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु सिंगल नहीं, सबको 2-2 पात्र मिले, सेवक को 4 पात्र दिए गए। और एक ब्राह्मण फिर आया और 3 पात्रों में भोजन ले आया और नित्यानंद प्रभु ने कहा थोड़ा थोड़ा कोर सबको बांट दो इसको भी। फिर एक ब्राह्मण आया फूल माला चंदन लेकर आया, तो नित्यानंद प्रभु ने चंदन लगाया उनके शरीर में, चंदन लगाया गया नित्यानंद प्रभु के में, फूल माला ली और बाकी की फूल माला सब भक्तों को बांट दी। और फिर एक नौकर आया पान लेकर,
पान चबाने लगे नित्यान प्रभु, और बची हुई मालाएं उन्होंने बांट दी। इसके बाद फिर क्या हुआ, नित्यान प्रभु ने जिस प्लेट में प्रसाद लिया था और जो पान लिया था, अब देखिए आजकल जो प्लेट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेम्पल्स में, कई मंदिरों में ऐसा है कि वो प्लेट होती है वो जहर होता है वास्तव में, लेकिन उस समय पर केले के पत्ते पर ये प्रसाद लिया जाता था। और जिस प्लेट में उन्होंने प्रसाद लिया था नित्यान प्रभु ने, बाद में लूट मची वहां उस प्लेट को लेने के लिए, और तुलसी के पत्ते के आकार की प्लेट किसी किसी के हाथ में पहुंची, क्योंकि इतनी भीड़ थी, सब नित्यान प्रभु का उचित चाहते थे, लेकिन लूट मची और सबने कहा लूट लो लूट लो। तो बहुत ही ये मधुर लीला इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा हुई। उनका सौभाग्य था कि महाप्रभु और नित्यान प्रभु उनके साथ ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, चूंकि देखिए इसके लिए डिजर्व करते हैं। तो भक्तों को चाहिए फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम लोग डिजर्व नहीं करते लेकिन डिजायर बहुत करते हैं, है ना, कि हमें वो गाड़ी मिल जाए, सिर्फ डिजायर मिल जाए। अरे डिजर्व तो करो तभी तो आपको डिजायर गाड़ी मिलेगी। हाँ, तो हमारी गाड़ी है आसक्ति भगवान में, भगवान का नाम लेते ही हमारी आंखों में आंसू लड़कने चाहिए। हम डिजायर तो करते हैं बट डिजर्व नहीं करते। देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी की जो सबसे बड़ी साधना जो मुझे खासकर से पर्सनली अट्रैक्ट करती है वो ये, नाम जब तो वो करते ही थे, 64 माला का जप करते थे, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी साधना थी, रोज 1000 दंड प्रणाम भगवान को करते थे, और उसका डबल 2000 दंड प्रणाम वैष्णवों को करते थे, उनका डेली का नियम था। ये जो उनकी जो साधना है ये उनका सीक्रेट सक्सेस का है, कि वैष्णवों को डबल 2000 दंड वैष्णव दंड प्रणाम, सोचिए, चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, जब ऐसी भावना हमारे हृदय में होगी वैष्णवों के प्रति, तो भगवान रोक नहीं सकते अपने आप को उसके हृदय, भक्त के हृदय में आने के लिए। तो आज के दिन हमें इस लीला से यही शिक्षा लेनी है कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो साधना है, आनाकानी नहीं करनी चाहिए दंड प्रणाम करने में। कभी कभी भक्त लोग आनाकानी करते, अरे इतनी बार तो कर दिया अब और। हालांकि मायापुर में एक बार हमने महाराज से पूछा था, गोपाल कृष्ण महाराज से एक बार हमने पूछा कि चूंकि वहां जिस कॉर्नर में निकलो महाराज आ गए, उस कॉर्नर में निकलो एक और महाराज आ गए, तो महाराज हमें क्या करना चाहिए। महाराज ने कहा कि एक बार एक महाराज को अगर आप देखते हो तो आपको दंड प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद अगर वो महाराज दोबारा दर्शन आपको होता है तो फिर चलेगा। ये नहीं कि जितनी बार आप देखो तो उतनी बार आप दंड करोगे, कम से कम एक बार आप किसी महाराज को देखो तो दंड करो। और हम रघुनाथ दास गोस्वामी तो कनिष्ठ को भी कर रहे हैं, मध्यम को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। अगर आप दंड प्रणाम नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं लगे, तो मैं तो कहता हूं कम से कम मन से तो प्रणाम सभी वैष्णवों को करना चाहिए रोज। ये हमारी एक साधना हो सकती है, ऐसी साधना हो सकती है जो हमें बहुत निकट ले आएगी भगवान की और भक्तों के। हरे कृष्णा। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दही जीरा पानी हटी तिथि महा महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है या चर्चा तो आपका स्वागत है प्रभु जी। यस प्रभु जी।
ये क्वेश्चन मेरा ये था कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो दंडवत करते थे, ये मेंटली होता था या फिजिकली वो करते?
फिजिकली फिजिकली यस।
तो फिजिकली टाइम फ्रेम में सेट नहीं होता हमारे माइंड में।
ये महानिधि स्वामी ने जो समाधि पुस्तक है उसमें इसको मेंशन किया है कि 1000 टाइम्स भगवान के सामने और 2000 टाइम्स वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। बिल्कुल 64 माला का जप कर रहे हैं ना, 192 नहीं है इनकी, इसलिए भी हो सकता है उन्होंने 64 रखी हो कि मेरी ये साधना रहेगी, है ना। तो 64 माला तो हमारे आचार्य जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, 192 में थोड़ा लग सकता है कि 24 आवर्स या 20 आवर्स कितना लगे। तो फिजिकली उन्होंने ऐसा किया यस। और हम देखते हैं कि उनका जो भोजन था 100 ग्राम एक दोने में छाछ लेते थे, कितना तपस्या थी। ब्रिजवासी उनको देख करके चिल्ला उठते थे कि ये कैसा शरीर है। इसके अलावा जब वो जप करते थे जून के महीने में, तो ये भी नहीं देखते थे कि एसी लगाया कि नहीं लगा है और ठंड है कि नहीं है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राधा कुंड के तट पर बैठ करके जप कर रहे हैं, भगवान को चिंता होती थी, कभी शेर आता था वहां, कभी राधा रानी ओढ़नी उनके ऊपर लगाती थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कितनी आसक्ति थी, कितने भाव से वो नाम लेते होंगे, सोचिए। अगर हम लोग थोड़ी देर भी धूप में खड़े हों तो जून के महीने में जहां जब कोई आता जाता नहीं था, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ करके जप करते थे। तो हमें कम से कम ये रियलाइज तो करना चाहिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी परंपरा में हम लोगों ने, हमें मौका मिला है सेवा करने का। बहुत ज्यादा हमारा सौभाग्य है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सचमुच में सभी भक्तों ने पिछले जन्मों में मोती रतन दान किए होंगे, जो इस परंपरा में हम लोग आ गए हैं, ऐसे हमें कृतज्ञ होना चाहिए अपने आचार्यों का, ऐसे आचार्यों की हम संतान हैं, हमें अपने आप को जरूर कुछ परसेंट तक तो पहुंचाना ही चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम यहाँ विराम करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नीताय गुरु प्रेमानंदे। हरि हरि।